अरमान जोया को खींचते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर ले गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने उसे अंदर की ओर धक्का दे दिया। जोया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और उठने लगी। उसने अपनी नजरें उठाकर आसपास देखना शुरू कर दिया। ये एक काफी बड़ा हॉल था। उसमें बीचों बीच एक बेड पड़ा था। जैसे जैसे वो चारों ओर देख रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें हैरत से फटती जा रही थीं। चारों ओर बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई थीं। जोया की अम्मी, अब्बू, भाई सबकी फोटो वहां लगी हुई थीं और सबसे ज्यादा जोया की फोटो वहां पर थीं। जोया हैरत से चारों ओर देख रही थी। उसके पूरे परिवार की फोटो अरमान के घर में क्या कर रही थी, और जोया की जितनी फोटो थी वो सब उसके गांव की थी। जोया हैरानी से बुरा हाल थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक जगह पर ठहर गई। उसने देखा कि उसकी फोटो की ओर एक आदमी मुंह करके बैठा है और उसकी फोटो को अपनी उंगलियों से छू रहा है। कभी लिप्स छू रहा है, कभी गाल। जोया धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ने लगी और पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तभी अचानक पूरे कमरे में लाइट्स चल गईं। जोया ने हैरान होकर इधर उधर देखा। पीछे अरमान खड़ा था जिसने लाइट ऑन की थी। तभी उसने सामने वाले आदमी की ओर देखा और उसकी आंखें हैरत से फट गईं। वहां कोई और नहीं बल्कि अरहम खड़ा था। इससे पहले कि जोया कुछ बोल पाती, अरहम ने जोया को गले लगा लिया। जोया खुद को संभालते हुए बोली, अरहम तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हें पता है? ये अरमान हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। इसने मुझे किडनैप किया है और इसने मेरी आंखों के सामने एक गार्ड के हाथ भी काट दिए हैं। ये बेहद खतरनाक है, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। जोया अरहम का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर पन्ने लगी। तभी अरमान उसके सामने आकर खड़ा हो गया और दूसरी ओर अरहम ने भी जोया का हाथ छोड़कर ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया। आगे अरमान था और पीछे अरहम। जोया एक आखिरी कोशिश करते हुए हकलाते हुए बोली, अरहम चलो ना। न जाने क्यों एक अनजाने से खौफ ने जोया को घेर लिया था। तभी अरमान और अरहम दोनों हंसते हुए उसके आगे पीछे घूमने लगे। जोया हैरानी से कभी अरमान को देख रही थी तो कभी अरहम को। जोया अपने कानों पर दोनों हाथ रखते हुए चिल्लाकर बोली, बस करो। उसकी आवाज काफी तेज थी। वे दोनों चुप हो गए, लेकिन दोनों ने मुस्कुराना अभी तक बंद नहीं किया था। जोया अरहम का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी, क्या है ये सब? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी अरमान बोला, ओ माय पुअर गर्ल, तुम अभी तक नहीं समझी। चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ, अरहम मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है और हम दोनों आज तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं। और एक बात स्वीटी, अरहम भी तुमसे मोहब्बत करता है और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आज से तुम हम दोनों की बनकर रहोगी। आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। जोया का हौसले से बुरा हाल था। अरहम का रोना, उसकी मोहब्बत सब एक दिखावा था, झूठ था। तभी जोया गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के पास। मुझसे दूर रहना तुम दोनों। शायद तुम नहीं जानते कि मैं किसकी बेटी हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, जोया ने अरमान और अरहम को वार्निंग देते हुए कहा और दरवाजे की ओर चल दी। तभी अरहम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और बोला, माई स्वीट जान जोया, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी अम्मी तो कब की मर चुकी है और वो तुम्हारा वफादार नौकर कब का गाँव चला गया है। और माई बेबी, मेरे अलावा तुम्हारा और कोई नहीं है इस दुनिया में। ओ सॉरी, मेरे अलावा नहीं, हमारे अलावा। मीट माई बिग ब्रो अरमान ठाकुर एंड मीट मी ऑल्सो, आई एम अरहम ठाकुर, उसने मजाक लहजे में कहा। मेरी अम्मी, मेरी अम्मी! जोया की तो जैसे जान हक में आ गई थी। क्या किया तुमने मेरी अम्मी के साथ? कहाँ है मेरी अम्मी? बोलो कहाँ है मेरी अम्मी? जोया कभी अरहम तो कभी अरमान से पूछ रही थी। नहीं स्वीटी, हमने कुछ नहीं किया तुम्हारी अम्मी के साथ। हम इतने बुरे भी नहीं हैं। वो बेचारी तो तुम्हारे अचानक गायब होने से परेशान हो गई और तुम्हारी वजह से उसे सदमा लगा और वो इस बेरहम दुनिया से दूर चली गई, अरमान ने मजाकिया लहजे में कहा। और हाँ मेरी जान, हमें अच्छे से पता है कि तुम किसकी औलाद हो और अपनी उसी पहचान की वजह से तुम यहाँ हो। क्या मेरी अम्मी अब नहीं रही? जोया की सांसें मानो थमसी गई थी और वो वहीं नीचे घुटनों के बल बैठ गई और वो अम्मी जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। जोया पूरे दो दिन तक बेहोश रही। पूरे दो दिन बाद उसे होश आया। वो उसी कमरे में थी जिसमें उसकी और उसके परिवार की फोटो थी। अरमान और अरहम दोनों में से वहां कोई नहीं था। जोया के दाहिने हाथ में एक सुई लगी हुई थी। जोया ने बेरहमी से उसे खींचकर फेंक दिया। ऐसा करने से उसके हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की। जोया के ठीक सामने उसके अम्मी अब्बू दोनों की फोटो थी। जोया अपने अम्मी अब्बू भाई सबको याद करके बेतहाशा रोने लगी। उसने डिसाइड कर लिया था कि जब उसके अपने ही कोई इस दुनिया में नहीं है तो वो जीकर क्या करेगी। उसने इधर उधर देखा, उसे सुसाइड करने का कोई सामान नहीं मिला। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर गई जहां से बहुत सारा खून निकल रहा था। तभी उसने वो फेंकी हुई सुई उठाई और एक नज़र अपनी अम्मी की फोटो को देखा और बोली, मैं आ रही हूँ अम्मी आपके पास, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर जोया ने खूब कसकर वो सुई अपने हाथ की उसी नस में घुसा दी जिसमें पहले से ही खून आ रहा था और देखते ही देखते ढेर सारा खून वहां फर्श पर जमा हो चुका था और जोया बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गई।